तब तो वो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, इसलिए कि बाहर 6 गाड़ियां और खड़ी होंगी उनके साथ आके, वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से। मुसलमान की जुबान में जो अल्लाह ने बयान की ताकत दी है, वो अपनी जुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करता है, और वो किसी के लिए भी आउट ऑफ डिग्निटी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। हमें अपने अंदर इस वक्त इसी शऊर को बेदार करने की जरूरत है। अल्लाह ने प्रिंसिपल ये दिया है कि तमाम इंसानों की इज्जत होगी, वलकद करमना बनी आदम, और सिंपल तरीका क्या है, हम सब मुख्तलिफ इंसान हैं, हम सब डॉक्टर नहीं बन सकते, हम सब इंजीनियर नहीं बन सकते, हम सब स्पीकर नहीं बन सकते, हम सब उस्ताद नहीं बन सकते, हम सब शेख और मुफ्ती नहीं बन सकते। ये दुनिया है, दुनिया को चलाने के लिए जैसे इकोसिस्टम में मुख्तलिफ जानवर रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह इस दुनिया को चलाने के लिए जो इंसानों की दुनिया है, आपको मुख्तलिफ प्रोफेशंस रिक्वायर्ड हैं। हाँ, वो प्रोफेशंस शरीयत के दायरे के अंदर अंदर होने चाहिए। मुख्तलिफ प्रोफेशंस होंगे लेकिन सब इंसान अल्लाह के दिए हुए प्रिंसिपल को थामे रहेंगे, कहीं टसल नहीं आएगी। डॉक्टर मौलवी को ब्लेम नहीं करेगा, मौलवी इंजीनियर को ब्लेम नहीं करेगा, और जो इंजीनियर है वो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को ब्लेम नहीं करेगा। दिस इज द हार्मनी जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो जिस फील्ड में होगा, जो जिस प्रोफेशन में होगा, अगेन कीपिंग द नेचर ऑफ द एनिमल इन योर माइंड, आपको बताया था जो जानवर, जो मखलूक अल्लाह ने बनाई है वो अपनी प्योर नेचर पर एग्जिस्ट करता है। अगर इंसान अपनी प्योर नेचर पर एग्जिस्ट करने लग जाए, अपने खालिक को याद रखें, अपने साथ कुरान को हमेशा टाई करके रखें, तो वो दूसरे इंसानों को कभी इंसल्टिंग वे में डील नहीं कर सकते। मुख्तलिफ प्रोफेशन शरीयत के दायरे में अडॉप्ट किए जाएंगे लेकिन सबके पास प्रिंसिपल ये होगा कि हमने अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। देखिए, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंक्लिनेशन होते हैं। सब तो उस्ताद नहीं बन के बैठ सकते, सब तो जो है वो उस्ताद या स्पीकर बन के, मुफ्ती बन के, शेख बन के नहीं बैठ सकते। माशरे को डॉक्टर्स की भी जरूरत है, माशरे को सेक्युलर स्कूल्स के अंदर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के टीचर्स की भी जरूरत है। यहां पर फाइनेंस सिस्टम भी चलाने की जरूरत है। उसूल सबको क्या याद रखना है, अपने अपने इंक्लिनेशन को अपनी फितरत के ताबे कर दें। आप जो काम भी करें उसमें अल्लाह को याद रखें, आप जो काम भी करें उसमें, आप जिस रिसोर्स को भी इस्तेमाल करें उसमें आपका यकीन यह होना चाहिए कि मैं हिम्मत करूंगी, कोशिश करूंगी, एफर्ट करूंगी, इसका फल मुझे अल्लाह देगा, रिजल्ट अल्लाह लेकर आएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। क्या जन्नत में सिर्फ मौलवी जाएंगे या सिर्फ कुरान के तालिब इल्म जाएंगे या कोई डॉक्टर इंजीनियर भी जा सकता है? ऑब्वियसली जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन जो जहां है, जो जिस फील्ड में है, उसको इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर जिंदगी गुजारनी है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ा सा कुरान का इल्म हासिल करना होगा। किसी का स्टेमिना ज्यादा होगा, किसी का स्टेमिना कम होगा। अल्लाह हमारा हिसाब अपनी रहमत से, अव्वल तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और ऑब्वियसली आपकी उम्मत में 70,000 बहुत छोटा नंबर है, तो जब सहाबा ने सवाल किया तो आपने फर्दर हदीस में एक्सप्लेन किया, जिसका मफहूम आता है कि हर एक ने आगे 70,000 का हाथ थामा होगा। अल्लाहुम्मा जाअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। लेकिन अल्लाह जिनका हिसाब लेगा, तो याद रखें अल्लाह इंसानों का हिसाब एक स्टैंडर्ड तरीके से, एक फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं लेगा। अल्लाह ताला हमारे सर्कमस्टांसेस देखेंगे, अल्लाह ताला हमारी कोशिश और स्ट्रगल देखेंगे। फर्ज करें दो औरतें हैं, एक है औरत जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन दुनियावी आसाइशें और लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिया है, पढ़ी लिखी है, फुर्सत भी बहुत है, वक्त भी बहुत है, और उसके पास स्टेमिना, सेहत भी बहुत है। दूसरी औरत है जिसके पास अल्लाह ताला ने इतने रिसोर्सेज नहीं दिए जितने बाकी दूसरी औरत को मिले थे, गरीब है, घर में सारे काम अपने हाथ से करती है, मेहनत करती है, सुबह से शाम अपने बच्चों के लिए कोशिश करती है। बस इसी तरह से जो है औरतें वो काम करती हैं और दिन भर कमाई करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना लेकर आती हैं। अल्लाह दोनों का हिसाब बराबर करेगा, उन दोनों का हिसाब उनके सरकमस्टांसेस के हिसाब से होगा। जब ही कम नेमतों वाले, जिनको दुनिया में कम नेमतें दी गई हैं, वो जन्नत में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए कि उनकी लिस्ट नेमतों की बहुत छोटी सी होगी। تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں ٹھوکر لگنے سے پہلے ہدایت کا راستہ دکھا دے، اللہ اپنی سزا سے پہلے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے اپنا راستہ مت دکھائیے گا، ہمیں نعمتوں کے شکر کے ذریعے اپنا راستے پر لے کر آئیے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اور میں آگے بڑھیں، لوگوں کو باہر نکل کر موٹیویٹ کیجئے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ جیسے آپ الحمدللہ زندگی میں وقت نکال کر یہاں آ رہی ہیں، باہر جا کر اولاد کو، بہن بھائیوں کو، سب کو موٹیویٹ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے، جب صحابہ کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، دیکھیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے گناہ کو پن پوائنٹ کریں اور پھر کہیں ٹراؤزر دیکھیں اپنا کہاں جا رہے ہیں، نہ پہنو تو بہتر ہے۔ بات کیسے کرتی ہو؟ جیسے منہ سے باربیکیو کرنے والے کول نکل رہے ہیں۔ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں بولو تو انگارے نکلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون نے اتنا اچھا محاورہ بتایا، وہ مجھے اب تک یاد رہ گیا۔ جب کوئی غصے میں بولتا تھا تو وہ کہتی تھی کیا انگاروں پہ بیٹھی ہوئی ہو، مطلب منہ سے بھی ڈائناسور کی طرح آگ نکل رہی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کے سامنے گزاریں، ان کو ان کی نعمتوں کا احساس دلائیں، اور پھر ان کو انکریج کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دے کر نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے نئی جگہوں پر جب صحابہ جاتے تھے، بشرو ولا تنفرو، گلیڈ ٹائڈنگز دو، لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرو۔ آبویسلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں گے، نہیں۔ اب جو یہاں آ کے بیٹھ جائے گا، اب آپ آ کر بیٹھ گئے تو ہم آپ سے محبت سے تو بات کر رہے ہیں، بٹ جو حق ہے وہ تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو فیکٹ ہے نا، حق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ جب آپ نئے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا آپ اس ہال کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی، آپ رائل روڈیل میں انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نے اسلامک پروٹوکال کے مطابق ڈریسنگ نہیں کی ہوگی، ہم نے کہا آپ سے۔ تو الحمدللہ ہم بھی بشرو ولا تنفرو کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے سب کا، کہ اللہ ہمیں وہ حلیہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ مسلمان عورت سے چاہتا ہے۔ بعض اوقات بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے، آپ اللہ سے بس دعا مانگے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ میں نہیں جانتی حق کیا ہے، جو حق ہے مجھے اس پر جما دے، جو صحیح بات ہے جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھے ویسا بنا دیں۔ پوچھیں اللہ سے اور ہدایت مانگیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اللہ نے ہر انسان کو مختلف کام اور انکلینیشن کے ساتھ بنایا ہے، ہم سب انسانوں کو مختلف پروفیشن شریعت کے دائرے میں اڈاپٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے پرنسپل میں اسلام کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ انکریج کریں کہ میں آگے نیکی میں بڑھ سکتی ہوں۔ آگے آیت نمبر 11 میں آپ کو ایک اور نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہوئے مل رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 فیہا فاکہتن والنخل ذات الاکمام، فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا فاکہتن، اللہ نے اس زمین میں مزیدار یمی لذیذ پھل رکھے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل کورنگز کے اندر، غلافوں کے اندر موجود ہیں۔ فاکہتن پھلوں کے لیے آیا ہے، عربی زبان میں الثمرات بھی آتا ہے فا کے ساتھ، جس کو نرمی سے بولا جاتا ہے، الثمرات بھی پھل کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اب آبویسلی میں اس کو گرامر کی کلاس نہیں بنا سکتی، نہ میں بہت ڈیٹیل تفسیر کی کلاس بنا سکتی ہوں، سمپل میں الثمرات نہیں بتا رہی۔ فاکہتن ایسے پھل کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جب آپ کوئی پھل منہ میں ڈالیں اور اس کا ذائقہ آپ کو اتنا یمی لگے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا اٹھے۔ جب آپ سیزن کا پہلا میٹھا شہد آم کھاتے ہیں، ابھی تو کھایا بھی نہیں، کیوی بہت اچھا مل جائے اپنے مطلب کے فلیور کا، اسٹرابیری بہت اچھی اپنے فلیور کی مل جائے، بعض لوگوں کو پھل سے بہت پسند ہوتے ہیں مزیدار قسم، اب روزے کے اندر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، مزیدار قسم کا مسالہ لگا کر آپ فالسا کھائیں تو کیسا مزہ آتا ہے۔ فاکہتن ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن کو کھا کر آپ کے چہرے پر उस जो एंजॉयमेंट का आपका मजा है वो हंसी की शक्ल में, मुस्कुराहट की शक्ल में, स्माइल की शक्ल में नजर आए सामने वाले को। अपनी पसंद का फल जैसे आप खाएं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हमारे बच्चों के चेहरों पे फल खा के कम मुस्कुराहट आती है, जितनी आप उनके फ्रेंच फ्राइज पर केचप भर दें तो जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब आपको फाके हतुन वाली फीलिंग्स को एंजॉय करना है तो बच्चों के सामने उनके पसंद का बर्गर या फ्रेंच फ्राइज की प्लेट बनाकर रखिएगा और उस पर भरकर केचप डाल दीजिएगा, फिर देखें जो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स द फीलिंग उस खुराक के लिए जिसको फाकेहा कहा जाता है। वो अलग बात है कि आजकल हमारे बच्चे इतना ज्यादा ये चीजें खाने लग गए हैं कि अब वो शुक्र का एलिमेंट और मुस्कुराहट का एलिमेंट कम ही हो गया। हकीकत है, आप कितने बर्गर्स खिला दें उनको उनकी मतलब के, कितने जो हैं वो ऑर्डर कर करके घर पर मंगवा लें डिलीवरी, मजाल है जो शुक्र का एलिमेंट उनके चेहरों पर आपको नजर आए मासेज में। हाँ, कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, बिल्कुल वलीउल्लाह टाइप बच्चे जो आकर अम्मा को हक करते हैं और फिर प्यार करते हैं, कहते थैंक यू अम्मा आपने बर्गर खिला दिया, मेरी जान छूट गई सब्जी खाने से। हाँ, फाके हातुन ऐसा कोई भी खाना, डेफिनेटली ये फल के लिए आता है, लेकिन अगर हम अपने आज के दौर में इसको समझने के लिए समझें, हर वो खुराक जिसको खाकर आपको इतनी खुशी हो, इतना फ्लेवर्ड हो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आप आजकल भी जब कोई अपनी नेमत इफ्तार के टाइम पर एंजॉय करते हैं कोई भी खाना, शुक्र के साथ साथ मुस्कुराया भी करें, घर वाले कहेंगे शायद कुछ नट बोल्ट हिल गए हैं इनके, अब कहें नहीं मैं फाके हाथुन बनाकर इस खाने को खा रही हूँ, एंजॉय करना चाह रही हूँ ताकि मुझे मजा आए। 90% मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप कभी होटलिंग करें, 90% लोग होटल्स में बैठते हैं, कहने को वो कहते हैं हम फैमिली आउटिंग पर जा रहे हैं, बट छह लोग बैठे होते हैं टेबल के ऊपर और सबका खाना उनके सामने होता है और सब अपने अपने मोबाइल फोन में देख के हंस रहे होते हैं, ना खाना खाते हुए हंस रहे होते हैं ना एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं, बट जो मोबाइल फोन में पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं या जो स्टेटस अपलोड करने के बाद कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं उस पर उनको हंसी आ रही होती है। हमने अपनी जिंदगियों को बहुत आर्टिफिशियल कर लिया है, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर फ्लेवर लेकर आए। अल्लाह ताला ने जमीन और जमीन के साथ फलों को यहां पर मेंशन किया है, इंसान को जमीन पर रहते हुए जहां आसमान की प्रोटेक्शन चाहिए, जहां जमीन की स्टेबिलिटी चाहिए, वहां अल्लाह ने इंसान की जरूरत में खुराक भी रखी है, शेल्टर भी रखा है। अल्लाह ताला ने यकीनन जानवरों को भी गिजा का एलिमेंट एज अ नेसेसिटी दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि इंसानों की गिजा में, इंसानों के फूड साइकिल में डाइवर्सिटी है। जैसे आपको सर्टन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जानवरों को इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते। अल्लाह चाहता तो आपके और मेरे लिए न्यूट्रिशियस खुराक, न्यूट्रिशियस फल कैसे ही बना देता। क्या हर न्यूट्रिशियस खाना मजेदार भी होता है? बच्चों से पूछे, आप उनसे कहें बेटा मैं तुम्हें लौकी खिलाऊंगी आज इफ्तारी के बाद, इसलिए कि ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। अगर आपका बच्चा बेचारा जहर मार कर भी ले तो वो उसको मजेदार लगेगी। तो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल, हर न्यूट्रिशियस खाना मजेदार नहीं होता। तो इंसान की जिंदगी की जरूरत थी न्यूट्रिशियस खाना, ताकि उसको जिंदगी में आगे बढ़ने में सर्टन न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो अल्लाह ताला चाहते तो न्यूट्रिशियस गिजा दे देते, मजेदार क्यों बनाई? दिस इज एक्स्ट्रा रहमत, रहमान है ना, उसने, रहमान ने आपको और मुझे खाना भी ऐसा दिया है जो सिर्फ हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, हमें खा के मजा भी आता है, हमारे चेहरे पर उसको खा के मुस्कुराहट भी आ जाती है। अल्लाह ताला ने घर रहने के लिए, शेल्टर रहने के लिए अगर दिया है और वो सिक्योर है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है, सर पर छत है। लेकिन अल्लाह ने लग्जूरियस घर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेमतों वाले घर दिए हैं, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा एहसान है, वो रहमान है, इसलिए अपने बंदों को बेतहाशा नेमतें देता है। इसलिए नहीं देता कि बंदा बिगड़ जाए, इसलिए देता है कि बंदा शुक्र के जरिए अल्लाह के रास्ते पर आए। जानवर, बाज जानवर दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, बाज जानवर जो हैं वो घास फूस खाते हैं, बाज जानवर दरख्तों की बार्क खाते हैं। सोचे बिरयानी की प्लेट में बार्क रखी होती दरख्त की, हलक से ही ना उतरते। अल्लाह कितना रहमान है कि उसने इतने मजे मजे के खाने दिए हैं। दिस सूरह रहमान इज एक्चुअली जस्ट टू अवेकन अस, کہ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھیں اور رب کو اکنالج کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کو زندگی میں مقام دیں، اللہ کو نعمتوں کے پردوں میں مت بھول جائیں، خود بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کو یاد کرائیں، جو ہماری فزیکل نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور جو ہمارے لیے بہترین مزیدار خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔